नित्या की अलग लेवल की प्लानिंग चल रही थी। मानव पहले चौंका, फिर उसकी खुशी और एक्साइटमेंट महसूस करते हुए मुस्कुरा दिया। ओके, जो तुम चाहोगी वही होगा। सच्ची? नित्या खुशी से उछल पड़ी। मानव ने धीरे से सर हिला दिया। नित्या का चेहरा खिल गया। उसकी खनकती आवाज़ मानव के कानों में पड़ी। मैं कल ही डैड को कहूंगी कि हनीमून के लिए हमारी राजस्थान की टिकट्स बुक कर दे, और जिन होटल्स में मैं पहले अपने फ्रेंड्स के साथ रुकी थी उन्हीं होटल्स में हमारे लिए रूम्स बुक करे। ये सुनते ही मानव के एक्सप्रेशन बिगड़ गए, मुस्कुराते लब सिमट गए, चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। कोई ज़रूरत नहीं है, मानव ने एकदम से कहा, जिसे नित्या चौंक गई। क्या कह रहे हो तुम? किसकी ज़रूरत नहीं है? तुम्हें अपने डैड से इस बारे में कुछ भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानव की आवाज़ और अंदाज़ सीरियस था। नित्या की आंखों की पुतलियां हैरानी से फैल गईं। क्यों? मैं डैड से हमारे हनीमून की बुकिंग्स के लिए बात क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूं, तुम्हें हनीमून पर राजस्थान जाना है ना, तो मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। जहां तुम कहोगी वहीं रुकेंगे हम, लेकिन तुम इसके लिए अपने डैड से कोई बात नहीं करोगी। हमारी शादी होगी तो अपनी वाइफ की इस ख्वाहिश को मैं खुद पूरी करूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम इस बारे में अपने डैड से बात करो और उन्हें लगे कि मैं तुम्हारी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी वाइफ मुझसे शादी के बाद भी अपनी ज़रूरतों और शौक के लिए अपने डैड पर निर्भर रहे, उनके आगे हाथ फैलाए, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माना तुम्हारे डैड जितना अमीर नहीं हूँ मैं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना भी कंगाल नहीं हूँ कि मेरी बीवी को हर चीज़ के लिए उसके मायके में हाथ फैलाना पड़े। मैं शायद तुम्हारी ज़रूरतें और शौक अभी पूरे ना कर सकूं, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। उसके बावजूद अगर कोई कमी रह जाए तो तुम्हें एडजस्ट करना होगा। ये नहीं कि मैं तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिला पाया तो तुम सीधे अपने डैड से जाकर मांग लो। मानव की बातों में अहंकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी, खुददारी और स्वाभिमान साफ झलक रहा था। वो उसे रोक नहीं रहा था, बस ये जताना चाहता था कि अब उसकी हर ज़रूरत उसकी ज़िम्मेदारी है। नित्या अपनी घनी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसकी बातें सुनती रही। बट मैं अपने डैड से कुछ क्यों नहीं मांग सकती? क्योंकि अगर शादी के बाद भी तुम अपनी हर ज़रूरत और शौक के लिए उन पर डिपेंडेंट रहोगी तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तुमसे शादी तो कर ली मैंने, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत ही नहीं है मुझमें। उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी गलत इंसान से करवा दी। पहले तो बस उन्हें शक था कि मेरी नज़र तुम पर नहीं, तुम्हारे डैड की दौलत पर है। और अगर तुम हर चीज़ के लिए उनके आगे हाथ फैलाती रहीं, फिर तो उनका ये शक यकीन में बदल जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए शादी के बाद तुम्हें कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम अपने डैड से नहीं मुझसे कहोगी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन अगर कभी मुझे थोड़ा वक्त लग जाए या मैं तुम्हारे किसी शौक को पूरा ना कर पाऊँ तो यहाँ तुम्हें थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। तो क्या तुमसे शादी होने के बाद मैं अपने डैड से कुछ नहीं मांग सकती? नित्या ने अपनी पलकों को झपकाया और कन्फ्यूज सी बोली। मानव ने गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल मांग सकती हो, वो डैड है तुम्हारे, हक है तुम्हारा। मैं तुम्हें तुम्हारा हक छोड़ने या अपने डैड से रिश्ता तोड़ने नहीं कह रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शादी के बाद तुम हर चीज़ के लिए उन्हें नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा तो तुम मेरी जिम्मेदारी होगी, और मैं एक इर्रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड नहीं बनना चाहता जिससे अपनी खुद की पत्नी की ज़रूरतें भी पूरी ना की जा सकें। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहना, मैं दिलाऊंगा। तब पॉसिबल नहीं होगा तो कुछ वक्त बाद दिलाऊंगा। अगर मेरी औकात से बाहर की चीज़ होगी और ज़रूरी नहीं होगी तो मना करूंगा, और तब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, समझना होगा मुझे। इसके अलावा अगर तुम्हें अपने डैड से कुछ चाहिए तो तुम पूरे हक से उनसे बोल सकती हो, लेकिन वो एक बेटी की अपने पिता से फरमाइश होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा इसलिए तुम्हें मजबूरन अपने डैड के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। कुछ समझ आया? मानव ने बहुत शांति और पेशेंस के साथ उसे समझाया था। पता नहीं नित्या को कितना समझ आया और कितना नहीं, लेकिन उसने झट से सर जरूर हिला दिया। मैं समझ गई, गुड, चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ अभी और बातें करनी है, नित्या तपात से बोली और क्यूट सी शक्ल बना ली। और बात करोगी तो सोओगी कब? टाइम देख रही हो? नित्या ने तुरंत सर वॉल क्लॉक की तरफ घुमाया। रात के 1:30 बज रहे थे। मेरा कॉल कट करने का दिल नहीं कर रहा और अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही, नित्या ने बड़ी ही मासूमियत से कहा और क्यूट सी शक्ल बना ली। फ़ोन पर उसके एक्सप्रेशन तो मानव नहीं देख सका, लेकिन नित्या की मासूमियत उसके दिल को छू गई और होंठ के किनारे हल्के मुड़ गए। चलो तो एक काम करो, पहले तुम बेड पर लेट जाओ, फिर हम बात करेंगे। वीडियो कॉल पर बात करेंगे? नित्या तपाक से बोली। उसकी खुशी और एक्साइटमेंट से भरी खनकती आवाज मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर बिखर गई। वीडियो कॉल पर बात करेंगे। नित्या खुशी से उछल पड़ी और तुरंत ही वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट सेंड कर दी, जिसे मानव ने भी जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ही सेकंड्स बाद नित्या के स्क्रीन पर मानव का हैंडसम सा चेहरा आ गया, तो वहीं मानव की नजर भी नित्या के मासूमियत से भरे चेहरे पर ठहर गई। उसकी आंखों की चमक, लबों की मुस्कान, चेहरे की कशिश मानव को अपनी ओर खींच रही थी। तुम अभी तक लेटी नहीं हो, मानव ने बैकग्राउंड देखते हुए कहा। नित्या ने तुरंत नजरें घुमाकर खुद को देखा, साथ ही उसे मानव की बात भी याद आई। उसने उसे लेटने कहा था, लेकिन वो सोफे पर पसरी हुई थी। नित्या ने अपनी जीभ दांतों तले दबाकर क्यूट सी शक्ल बनाई और तुरंत उठकर जाकर बेड पर लेट गई। उसकी स्पीड देखकर पहले तो मानव दंग रह गया, फिर मुस्कुरा दिया। नित्या की नॉनस्टॉप बातें चालू थी। मानव उसकी बातें सुन रहा था, बीच बीच में जवाब भी दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें नित्या के हसीन चेहरे पर ठहरी हुई थी। कुछ देर बाद नित्या की पलकें भारी होने लगी। शुरू में वो अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए मानव से बातें करती रही, फिर पिलो पर सर रखा और बोलते बोलते ही नींद की आगोश में चली गई। नित्या सो चुकी थी। उसकी गहरी सांसों की आवाज फोन के दूसरे तरफ मौजूद मानव के कानों तक भी जा रही थी। वो कुछ देर सोती हुई नित्या को देखता रहा, फिर उसने कॉल कट कर दी और खुद भी सोने के लिए लेट गया। ऐना, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? कायरव ने सौम्य स्वर में सवाल किया और प्यार से उसके गाल को छुआ। इनाया ने धीरे से सर हिला दिया। ठीक लग रहा है। फिर पल भर ठहरते हुए उसने सवाल किया, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? ठीक थी, क्लाइंट के साथ डिनर का प्लान बन गया था इसलिए लेट हो गया। तुमने टाइम से डिनर कर लिया था ना? इनाया ने सर हिला दिया। मेडिसिन ली थी? मेडिसिन लेने के बाद तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, फिर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम भी नहीं थे? इनाया ने मायूसी से कहा। उसका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा था। कायरव फॉर्मल्स में था और अभी अभी घर आया था। कायरव ने इनाया के उदास मायूस चेहरे को देखा, फिर उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम लिया। सॉरी, मैं जल्दी आने वाला था लेकिन एंड टाइम पर मीटिंग आ गई, इम्पॉर्टेंट थी, कैंसिल भी नहीं कर सकता था, पोस्टपोन करना भी पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की जल्दी आने की, लेकिन आ नहीं पाया और तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। आई एम सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर मेरे साथ साथ कंपनी की भी जिम्मेदारी है, तुम्हें दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। मैं जानती हूँ अगर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं होता, ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तो तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर जाते ही नहीं।
इनाया कायरव को समझती थी और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। कायरव का गिल्ट कुछ कम हुआ और उसने आगे बढ़कर इनाया के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तुम्हारे जगह अगर कोई और लड़की होती तो उसकी कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती, लेकिन तुम मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करती। तुम्हारे सपोर्ट के वजह से ही मेरे लिए बिजनेस और पर्सनल लाइफ को साथ साथ मैनेज करना पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। कायरव ने इनाया के सर को चूम लिया। अब तुम रेस्ट करो, 5 मिनट तो मुझे, मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद तुम्हें सुला दूंगा। कायरव ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और जैसे ही पीछे हटने लगा, इनाया ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। कायरव ठिठक कर रुका और सवालिया निगाहें इनाया की तरफ उठ गईं। टू बी कंटिन्यूड।